पाठ चार माटी वाली। लेखक विद्यासागर नौटिया। नमस्कार विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 तारापुर से मैं खिमाराम आज इस पाठ को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की और बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर दोनों हाथों से एक बुढ़िया ने अपने सर के ऊपर रखे मिट्टी के कनस्तर को उतार करके वह एक घर के अंदर गई। कनस्तर वहां की भाषा में उसको कंटर कहते हैं। एक लोहे का बहुत बड़ा टोकरी होती है जिसके अंदर आप कुछ बिरकी रख करके जा सकते हैं। टिहरी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें उसकी पहचान नहीं हो या उस घर के लोग उसे न जानते हो। न केवल वह हर घर के लोगों को जानती थी बल्कि घर का उस पूरे शहर के हर एक घर का सदस्य उस बुढ़िया को भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। न केवल उस शहर के निवासी बल्कि अपने किसी रोजी रोटी के वास्ते इस शहर में आकर के रहने वाले किराएदार तक भी उस बुढ़िया को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे लोग न केवल उसे जानते थे बल्कि उसके कनस्तर को भी बहुत अच्छे से जानते और पहचानते थे। टिहरी के लोगों को अपने चूल्हे चौके की लिपाई पुताई के लिए और तीज त्योहार के समय अपने घरों की लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता होती थी। पूरे शहर के अंदर उस लाल मिट्टी की आपूर्ति का काम वह हरिजन नाट्यकद की बुढ़िया करती थी। कुछ भी हो जाए पर शहर के प्रत्येक घर के अंदर लाल मिट्टी हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए थी और उस मिट्टी को लाने का पूर्ति करने का कार्य वह बूढ़ी हरिजन बुढ़िया करती थी। शहरवासी न केवल उसे बल्कि उसके कनस्तर को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसका कनस्तर ऊपर से बिना ढक्कन का होना था। इस्तेमाल करने से पहले बुढ़िया जो है उस कनस्तर के ढक्कन को निकाल करके फेंक देती थी। उसका मुख्य कारण था ताकि उसके अंदर और अधिक मिट्टी समा सके और वह उसे छुलबुल करके ऊपर तक भरा रह सके ताकि वह अधिक से अधिक मिट्टी ले जा करके घरों के अंदर आपूर्ति कर सके। दूसरा, ढक्कन नहीं होने से उसके अंदर की भरी हुई मिट्टी को खाली करने में भी आसानी रहती है। जैसे ही बुढ़िया ने अपने कनस्तर को उस घर में घुस करके उतारा, सामने से एक 9-10 साल की बच्ची जिसका नाम कामिनी था वह आकर के बोलने लगी कि मारी जरा हमारे यहाँ भी आना, मेरी माँ ने आपको बुलाया है। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं आती हूँ। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है, घर की मालकिन ने हरिजन बुढ़िया से कहा। भाग्यवान आए खाते वक्त, बोला बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो खाने के टाइम आते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां ले आई। उसे रोटियां सौंप कर वह फिर से रसोई के अंदर घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का तो कोई जरा वक्त था ही नहीं। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर अपनी तेज नजरें दौड़ाई और अपने जो डिल्ला था यानी एक चादर का गोल गोल लपेटा हुआ जिसे अपने सिर के ऊपर रखती थी ताकि माटी से भरा हुआ कनस्तर रखने पर उसके सिर को ज्यादा चोट नहीं पहुंचे या सीधा दर्द नहीं हो, लिहाजा वो कपड़ा गोल समेट करके रखती थी जिसे स्थानीय भाषा में डिल्ला कहते हैं। उस डिल्ले को उसने खोला, खोलते ही वो एक बहुत बड़ी चादर के रूप में प्रकट हो गया। उसने जल्दी से तुरंत इधर उधर नजर दौड़ा करके एक रोटी उस चादर के किनारे पर बांध दी और फिर मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले ही चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक को उसने मोड़ करके उस चादर के लपेटा और साथ ही अपना मुंह यों ही चलाकर खाने का प्रयत्न करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में उसके लिए चाय लेकर आई थी। ले सद्दा साग बाक्सी कुछ है नहीं अभी, इसे चाय के साथ निगल जा। चाय को जमीन पर रख कर के पीतल के गिलास में चाय भरी हुई थी, उस चाय को जमीन पर रख करके घर की मालकिन व ठुकराइन हरिजन बुढ़िया से बोली, ले घर में कोई रात का बचा हुआ खाना या सब्जी तो है नहीं, तो एक काम कर, इन ठंडी रोटियों को चाय के साथ ही निगल जा। माटी वाली ने खुले हुए कपड़े के एक किनारे से उस गर्म पीतल की चाय के इस गिलास को पकड़ा और फिर अपने होठों के पास ले जा करके उसको छुआने से पहले, पीने से पहले जोर जोर से फूंक मारने का प्रयास करके उसे ठंडा करने का प्रयत्न करने लगी। फिर रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय को वह छुड़कने लगी या निगलने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है ठुकराइन जी, बुढ़िया ने ठुकराइन से कहा। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा, इस प्रकार की बात ठुकराइन ने बुढ़िया को कही। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब ये मिल सकते नहीं हैं। बाजार में भी नहीं मिलते और किसी के घरों में भी नहीं मिलते, इस प्रकार की बात बुढ़िया ने ठुकराइन के सामने कही। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट चुके हैं। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई इन चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता है। हमें क्या मालूम किस प्रकार के तंग हालात में अपने जीभ के स्वाद को मार करके, अपने पेट पर कपड़ा बांध करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने एक एक पाई जोड़ करके, दो दो पैसे जमा करके इतनी कीमती वस्तुओं को खरीद दिया होगा, जिनसे हमारी आजकल की इस पीढ़ी में, आजकल के हमारे लोगों में उसकी कोई कीमत नहीं है। बाजार में जाकर पीतल के भाव पूछो तो पता चलेगा। दाम सुनकर के दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी हमारे घरों में हराम के भाव में इनको इकट्ठा करके ले जाते हैं, इस प्रकार के कांसे, पीतल और तांबे के तमाम बर्तन। आजकल तो कांसे के बर्तन भी घरों से और बाजार से पूरी तरह गायब हो सकते हैं। इतनी लंबी और गहरी बात सोचने की बात किसके दिमाग में आती है मालकिन। अब तो जिस घर में भी जाओ वहां पर कांच के, चीनी मिट्टी के और स्टील के बांडे बर्तन ही मिलते हैं। ठुकराइन जी, अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है, बुढ़िया ने कहा। अब जिस घर में भी जाओ वहां पर स्टील के भांडे ही दिखाई पड़ते हैं, या फिर कांच या चीनी मिट्टी के। मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे। बुढ़िया ने अपना दर्द, अपने दिल के अंदर की बात ठुकराइन के सामने रखी, क्योंकि टिहरी का बांध बन चुका था और बांध के विस्थापन में उनका घर और उनका शहर आ चुका था। लिहाजा अपने दर्द का बंटवारा जो है उसने उस ठुकराइन के सामने किया। ठुकराइन ने जब ये बात कही तो बुढ़िया बोली कि ठुकराइन जी, आप तो जमीन जायदाद और पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, आप तो जहां भी जाएंगे अपने पैसों से कहीं न कहीं नया आशियाना खरीद लेंगे, नया मकान खरीद लेंगे। आप सोचिए मेरा क्या होगा जिसका न जमीन है, न जायदाद है, न रुपया है, न पैसा है। मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। जब मैं खुद के बारे में सोचती हूँ तो दिल बैठ जाता है कि अब मेरा क्या होगा। चाय खत्म करके माटी वाली ने एक हाथ से अपना कपड़ा उठाया और दूसरे हाथ में खाली कनस्तर लेकर के वह बाहर निकल करके सामने वाले घर में चली गई। सामने वाले घर से भी उसे कल हर हाल में माटी ले आना है, इस हुक्म के साथ, इस आदेश के साथ दो रोटियां दे दी गई। उसने फटाक से उन दो रोटियों को भी अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। अब लोग जो जाने सो जाने, उनको जो सोचना है सोचे कि मैं अपने बुड्ढे के लिए रोटियां लेके जा रहे हूँ। उसके घर पहुंचते ही उसका वो अशक्त, बीमार, कमजोर बुड्ढा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही तीन रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसके बुड्ढे का चेहरा खिल उठेगा। साथ में वो ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। तब उसके बुड्ढे का चिर परिचित अंदाज में यह स्वर सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर से बहुत पास भी नहीं था, थोड़ा दूर था। हालांकि कितना भी तेज चलने के बावजूद भी लगभग अपने घर पहुंचने में उसे 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। रोज भोर में सवेरे वह सुबह सुबह ही निकल जाती थी अपने घर से और पूरा दिन माटा खाने में माटी खोद खोद करके कनस्तर भर भर के शहर में लाकर के घर घर पहुंचाने का काम वह बुढ़िया करती थी। घर पहुंचने से पहले आज रात हो रही थी, रात घिरने लगी थी। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था, अपना कोई जमीन का टुकड़ा भी नहीं था। झोपड़ी भी जिसमें वह अपने पति के साथ गुजारा करती थी गांव के एक ठाकुर की जमीन के ऊपर खड़ी थी, और उस जमीन पर रहने के एवज में उसे न जाने ठाकुर के कितने अनगिनत काम बेगार के रूप में करने पड़ते थे, जिसके लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता था, न खाना, न दाम, न पैसा, न मजदूरी। नहीं, आज वह अपने गठरी के रूप में बदल चुके पति को, अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। वह रास्ते में चलते चलते इस प्रकार का हिसाब किताब करने लगी। माटी बेचने से आज जो उसे आमदनी हुई थी, जो पैसे उसे मिले थे, उससे उसने एक पाव भर प्याज खरीद लिए थे। प्याज को कूटकर वह जल्दी जल्दी उन्हें तेल में तल करके थोड़ी सी सब्जी बना लेगी, और बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही वह तुरंत थाली में उसे परोस देगी, उसके सामने वे दे रोटियां। अब तो वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद डेढ़। अब उसे ज्यादा पचता नहीं है, बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी, क्योंकि एक रोटी तो वह पहले ही खा चुकी है। मन ही मन इस प्रकार से वह सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई अपने घर की ओर जा रही थी, और धीरे धीरे अपने घर में वह पहुंच चुकी थी। आज उसके बुड्ढे को अब उसकी रोटी की जरूरत नहीं थी। माटी वाली के पावों की आहट सुन करके रोज की तरह आज उसका बुड्ढा चौंका नहीं था। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई थी, वह काजर दृष्टि से, कातर नजर से उसकी ओर आज नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में किसी प्रकार की भूख आज उसे नजर नहीं आ रही थी। घबराई हुई माटी वाली उसके पास पहुंची, उसके खटिया के पास पहुंची, तो जो कि एक गठरी के रूप में तब्दील हो चुका था, पास गई। डरते डरते जब उसके बदन को छुआ, तो बदन को छूते ही वह सिहर उठी। उसका बुड्ढा तो आज अपनी ही माटी को छोड़ करके जा चुका था। अब उसका बुड्ढा जीवित नहीं था, वह उसे छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। टिहरी बांध के पुनर्वास के लिए जो सरकारी अफसर आ रहे थे, उनमें से एक अफसर ने उस माटी वाली बुढ़िया से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तुम तहसील से अपने घर का एक प्रमाण पत्र बनवा करके ले आओ। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते देते गुजर गई साहब, मैं कहाँ से लाती हूँ। अफसर ने कहा, माटी कहाँ से लाती हो। बुढ़िया ने जवाब दिया, माटा खाना से लाती हूँ माटी तो। तो वह माटा खाना क्या तुम्हारे नाम पर चढ़ा हुआ है, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब, मेरे नाम पर कैसे चढ़ा हुआ हो सकता है। बुढ़िया, हमें तो जमीन का कागज चाहिए, तुम्हारी रोजी नहीं। बांध बनने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी साहब, मेरा क्या होगा। अफसर ने जवाब दिया, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, इस बात का फैसला तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा कि बांध बनने के बाद तुम्हें कहाँ जाना है। इस शहर में तो अब तुम रह नहीं सकती, क्योंकि बांध पूरी तरह से पानी से भर जाएगा, तब ये घर और ये जमीन कुछ भी नहीं रह पाएगी। टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहर में पानी भरने लगा था। पूरा शहर पानी से भर चुका था, भयंकर बारिश हो रही थी, और सबसे पहले शहर के बाहर के शमशान घाटों में पानी भर चुका था। पूरे शहर में आपाधापी मची हुई थी, लोग बदहवासे से इधर उधर दौड़ रहे थे, हर कोई अपने घरों को छोड़ करके वहां से भागने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे शहर में पानी का स्तर बढ़ने लगा था, बाढ़ का स्तर बढ़ने लगा था। पानी भर जाने से सबसे पहले शहर के बाहर जो कुल के शमशान घाट थे, अलग अलग जाति और धर्म के जो शमशान घाट थे, वो सबसे पहले पानी से भर चुके थे। बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, और हर बदहवास से आने जाने वाले भागते गांव के लोगों से एक ही बात कहती थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए साहब, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। उसका कारण था कि चारों ओर बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से, उस बांध के पानी की वजह से, शहर और सारे शमशानों में पानी भर चुका था, और वह अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रही थी, अपने पति की चिता को भी नहीं जला पा रही थी। यह दर्द उसके अंदर था। रोजी रोटी तो बाद की बात थी, जीते जी कभी उसे चैन नहीं मिला, और मरने के बाद भी उसके पति को चिता नसीब नहीं हो रही थी, अग्नि नसीब नहीं हो पा रही थी, वह अपनी पति की माटी को अग्नि नहीं दे पा रही थी, यह कितनी बड़ी विडंबना थी। इस पुनर्वास की, इस आधुनिकता से, इस बांध के निर्माण की वजह से ऐसे न जाने कितने अनगिनत गरीबों को अपने जीवन के अंदर बेतहाशा तकलीफों से गुजरना पड़ा होगा। इस बात का दर्द, इस बात को कवि और लेखक विद्यासागर नौटियाल ने बड़े ही मार्मिक तरीके से हम सबके समक्ष रखा है। धन्यवाद। नमस्कार।